हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया, जिसके द्वारा उन्होंने गोवर्धन को पूजनीय साबित किया। भगवान की नजरों में गोवर्धन जैसे शुद्ध भगवान के भक्त पूजनीय होते हैं। इसके संदर्भ में हम भरत चरितामृत ले रहे हैं कई रविवारों से। तो पिछले रविवार को हमने अयोध्या के जो प्रेषक भेजे गए, वशिष्ठ मुनि ने भेजे समाचार ये कि भरत को तुरंत लौटना है अयोध्या, क्योंकि भरत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रतीक्षा में है। यहां तक कि इन्होंने ये समाचार भरत को दिया, बिग फॉर्च्यून इज वेटिंग फॉर यू। तो भरत समझ गए कि सबसे पहले तो जिन दूतों को भेजा है समाचार के द्वारा वो साधारण नहीं है, ये दूत साधारण नहीं है, इसलिए कारण भी साधारण नहीं होगा। और क्योंकि पहेलियों में ये समाचार मुझे दे रहे हैं, तो भरत समझ गए कि इन पहेलियों के पीछे का जो समाचार है वो कुछ अनुकूल नहीं दिख रहा। तो हमने ये जो 18वीं शिक्षा इन दूतों से सीखी, when one experiences dreadful past and anticipates a gloomy future, then the present mind races like a wild horse। तो रथों पर आरूढ़ अपने घोड़ों को ये चला रहे हैं, परंतु जो घोड़े हैं वो भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, और ये घोड़े भी उतने ही व्याकुल हैं जितने ये दूत, जितने बाकी अयोध्यावासी। तो एक शॉर्ट रिकैप हम लेंगे। पिछली बार हमने इस 18वीं शिक्षा पर क्या चर्चा की थी। ये जो हमारा मन है ये इस घड़ी के पेंडुलम के समान है। अधिकांश समय या तो ये अतीत या भविष्य, अतीत के विषय में रंज करता रहता है और भविष्य के विषय में चिंता, जैसे कि यहां पर ये लोग कर रहे थे। तो अक्सर जब हम हमारे अतीत के विषय में सोचते हैं तो बहुत प्रसन्न चित्त हृदय से नहीं सोचते। हर समय अतीत के विषय में हम काश लगाते हैं, काश मैं कुछ और कर पाता, काश मैं कहीं और पैदा हो जाता, काश मेरे पास थोड़ी और धन संपत्ति, थोड़ा और अच्छा रूप, सौंदर्य, शक्ति, विद्या इत्यादि मुझे प्राप्त हो जाती, और वर्तमान को भूलते हुए हम भविष्य की चिंता करते हैं कि कहीं जो थोड़ा बहुत वर्तमान मैंने प्राप्त किया है वो छिन न ले जाए मुझसे कोई। इसलिए हम अक्सर ये मनोरथ पर बैठे रहते हैं। कौन सा है ये मनोरथ? BMW, ब्लेमिंग, मॉर्निंग एंड वरिंग। एंग्जाइटी इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी बट बिकॉज ऑफ इनर इंस्टेबिलिटी। लक्ष्मण ने यह प्रश्न पूछा प्रभु श्री राम से कि मैं जो इतना भावुक हूं आपके अनुसार, तो क्या भावनाएं होना गलत है? हमने भक्ति रसामृत सिंधु से भावनाओं के संदर्भ में ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किया था, जहां रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण भावना का विज्ञान जो सिखा रहे हैं उसमें नाट्य शास्त्र और भक्ति शास्त्र का समन्वय ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे वो अनुवादित करते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं उसका उद्दीपन होता है रस से, इसलिए कर्म ज्ञान भक्ति में यह अंतर है कि भक्ति ही वो एक मार्ग है जहां पर हम हमारी भावनाओं को शुद्ध तरीके से भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंततः हमने हमारे पिछले सत्र में ये डिस्कस किया था कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, हमारी भावनाओं को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, और उसके लिए हमें वर्तमान में रहना है। जो हमारी वर्तमान की भावना है उसे प्रस्तुत करना है भगवान के सामने। कृष्ण कॉन्शियसनेस बिगिंस बाय बीइंग अवेयर ऑफ वंस प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड टू हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। तो अब हम अगली शिक्षा पर जाते हैं। अब ये लोग लौट रहे हैं, भरत को लेकर ये दूत अब लौट रहे हैं, और लौटते समय अब इनके मन में क्या विचार आ रहा है। जब ये कई देश जा रहे थे उस समय इनके मन में जो विचार थे उसकी चर्चा हमने करी। अब ये जब लौट रहे हैं तो इनके मन में एक आशा की किरण है, क्योंकि तुरंत ये समझ गए कि भरत जो है अब केवल बताने की देरी है, या भरत को जानने की देरी है कि क्या बवाल हुआ है अयोध्या में। और एक आशा की किरण, क्योंकि अब वहां पर राम लक्ष्मण सीता तो है नहीं, दशरथ भी नहीं है, वशिष्ठ वो राज्य का कार्यभार वो केवल सलाह देने के लिए हैं, तो उनके ऊपर उनके हाथ राइट्स नहीं है उनके पास। तो एक है केवल भरत, और इनका डिस्पोजिशन देखते हुए इनके अंदर आशा की किरण जागृत हो रही है। देखिए रामायण कितना सूक्ष्म ग्रंथ है कि यहां तक कि अयोध्या के दूत जो भेजे गए हैं वाल्मीकि मुनि, उनके मनोभाव को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है सूक्ष्मता हमारे वैदिक ग्रंथों की, कि वो औपचारिकता से भगवान की कोई लीला प्रस्तुत नहीं करते जस्ट फॉर नेम सेक या फॉर्मैलिटी के तौर पर। ऐसी ऐसी गहराई में जाकर बारीकियों को हमारे सामने प्रस्तुत कर क्या, किस लिए, ताकि हम जब भगवान श्री राम के चरित्र को, भरत के चरित्र को समझें और अपने जीवन में उतारें, और जो भी कुछ हम हमारे जीवन में करें इसी बारीकी से करें, यह उद्देश्य है। तो फोकस ऑन वैल्यूएबल एम्बिशन गिव्स राइज टू हैप्पी टॉलरेंस। वापसी की उनकी यात्रा, किसी ने भी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, क्योंकि इन सब के अंदर अब जो मैंने कहा आशा की किरण, कि हो सकता है भरत जो हैं वो रामचंद्र जी को मना लें, वापस रामचंद्र जी को अयोध्या ले आए, और जो हमने राज्याभिषेक की तैयारी की थी रामचंद्र जी को राजा बनाने का, वो सफल कर दे भरत। तो इसलिए वापसी में जो भी तकलीफें, कोई भी जब किसी सफर के लिए निकलता है तो कोई ना कोई तकलीफ होती है उस सफर की, उस यात्रा की। तो आज हम ये बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि यदि हम एक साधक की भूमिका निभा रहे हैं और हम भी एक यात्रा में हैं, कौन सी यात्रा चल रही है? वृंदावन पहुंचने की यात्रा। अभी तक पहुंचे नहीं हैं वृंदावन, परंतु मार्ग में हैं। तो ये जो हमारी यात्रा चल रही है, साधक की यात्रा चल रही है, और इसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं, जैसे कि किसी भी यात्रा में आती हैं, ट्रबल्स ऑफ द जर्नी जिसको बोलते हैं, क्या वो हम हंसते खेलते सहन कर रहे हैं या शिकायत करते हुए और रंज करते हुए इसे केवल टॉलरेट कर रहे हैं? किस पर निर्भर करेगा ये कि हमारा एम्बिशन, हमारा जो गंतव्य स्थान है, उद्देश्य हमारा जो है वो कितना क्लियर है, उस पर हमारी दृष्टि कितनी जमी हुई है और उससे हम कितना आकर्षित हैं। इसलिए भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुड कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ अ प्रैक्टिशनर। हम लोग आध्यात्मिक संसार के विषय में कितनी जानकारी हासिल करते हैं, भगवान का धाम, भगवान का नाम रूप गुण लीला, उनके अनुयायी परिकर, इन सब के विषय में कितनी जानकारी, भर भर कर जानकारी है, इंफॉर्मेशन। तो इतनी जानकारी क्यों दी गई है? और जैसे कि अभी हमने कहा कि इतनी बारीकी से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इतना क्यों है? जैसे प्रभुपाद ने कहा, सो दैट वी बिकम कैप्टिवेटेड। जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी होती है, वो किसे डिटेल्स में आपको कहाँ छुट्टी पर जाना है उस जगह के डिटेल्स वो लोग दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि इच्छा जागृत हो, अरे क्यों नहीं इस जगह पर जाकर देखा जाए, छुट्टी यहां जाकर मनाई जाए। अब हम लोग भक्ति में आए हैं, इंफॉर्मेशन इतनी है, माइरियाड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनसाइक्लोपीडिया इंफॉर्मेशन की, और हम सब हमारी लाइकिंग के अनुसार हमारे एम्बिशंस बनाकर हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई शरीर से बहुत परेशान है, तो वो जब सुनता है कि आध्यात्मिक शरीर ऐसा है जहां पर कोई बीमारी नहीं होता है, बूढ़ा ही नहीं होता है, तो यदि वो शरीर से परेशान है तो उसके लिए वैल्यूएबल एम्बिशन क्या हो गया? एक ऐसा शरीर प्राप्त करना जहां पर कोई जोड़ों के दर्द नहीं होंगे, कभी कोई पेट की समस्या नहीं होगी, कभी बाल जड़ेंगे नहीं, कभी बाल सफेद नहीं होंगे, ये उसके लिए अट्रैक्टिव प्रपोजल बन जाता है, ये उसके लिए एक वैल्यूएबल एम्बिशन बन जाता है। कोई यदि फाइनेंशियल क्राइसिस में तो उसे जब पता चलता है अरे आध्यात्मिक संसार में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंस ही नहीं है, अरे वहां तो लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी वो भगवान की सेवा में लगी हुई है, वाह, तो ऐसी जगह जहां पर कोई ईएमआई नहीं भरना है, किराया नहीं भरना है, कोई शरीर से त्रस्त है, कोई आर्थिक उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई मौसम से परेशान है, अलग अलग प्रकार की परेशानियां, और वो अपना अपना इंफॉर्मेशन ढूंढता है। जैसे बचपन में हर गुरुवार को हमारी कॉलोनी में बाल विहार नाम की क्लासेस होती थी चिन्मय मिशन द्वारा, जैसे हमारा संडे स्कूल होता है यहाँ पर, तो वैसे गुरुवार को चिन्मय मिशन उनके लोग आकर बाल विहार की क्लासेस, ये कोई कंपलसरी नहीं था, परंतु हम कुछ अधिकांश बच्चे वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के, वो लोग बहुत रिलीजियसली उसको अटेंड करते थे, और उसके अंदर संस्कृत के श्लोक, कहानियां भी सुनाई जाती थी, परंतु संस्कृत के श्लोक याद करनी है आपको, पूरा पूरा अध्याय याद करना है। तो अब सोचिए उस उम्र में संस्कृत के श्लोक याद करना, पहले स्कूल में इतनी पढ़ाई होती है, तो क्या ये एक बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल था क्या बच्चों के लिए? भजन गाना, अरे इतने गीत हैं गाने के लिए, भजन ही क्यों गाएंगे हम? और स्कूल के बाद वर्किंग डे थर्सडे, ऐसा भी नहीं कि कोई छुट्टी के दिन, नेक्स्ट डे भी स्कूल है, उस दिन भी स्कूल हुआ है, तो हमारे लिए वैल्यूबल एम्बिशन क्या था? वो एक स्पेशल पेड़ा लेकर आते थे वो लोग, जो कि किसी मिठाई की दुकान पर नहीं मिलता था, जो कि किसी के घर पे नहीं बन सकता था, ऐसा वो पेड़ा देते थे वो लोग, और वो लास्ट में देते थे। तो उस पेड़े के चलते कितने श्लोक याद किए, कितने भजन गाए, कितने महाभारत रामायण की कहानियां सुन ली। देखो पेड़ा तो सिस्टम में से चला गया, लेकिन रामायण महाभारत और गीता के श्लोक रह गए। ये है ट्रांसेंडेंटल ट्रिकरी। जैसे हम लोग जब गंगोत्री से गोमुख की ओर चढ़ाई किए हिमालय पर्वत पर, 18 किलोमीटर ट्रेकिंग, और वो भी छोटी सी पगडंडी, एक तरफ हिमालय पर्वत और दूसरी ओर खाई और नीचे गंगा, गंगा बह रही है, बहुत सुंदर वो सीन, लेकिन डरावना भी। इतनी सी पगडंडी और उस पर आपको, और चढ़ाई है, सीधा रास्ता नहीं है ये, चढ़ाई है ये, और इतना ऊपर आपको चढ़ना है, वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो सांस जल्दी फूलती है। एक हमारे डिवोटी कांग्रेगेशन के चौपाटी के, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। अब जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है उसके लिए तो बहुत डेंजरस है, तो बहुत मुश्किलों से वो चल पा रहे थे, और वो माइलस्टोन्स आ रहे थे, गोमुख 15 किलोमीटर्स, मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि शायद बस पहुंच गए, फिर जब माइलस्टोन देखा कि 15 किलोमीटर और है, और वो ऐसी ऐसी पगडंडी कि हिमालय के इतने सारी जो पर्वत हैं चोटियों में से, तो आप देखोगे कि अभी यहां पर शायद ये पगडंडी एंड हो रही है, फिर आप उस मोड़ तक पहुंचते हो, फिर आप देखते हो कि वो पूरा रास्ता एक और पर्वत पर जुड़ रहा है, और कितनी लंबी ये पगडंडी है, तो हम तो कुछ ब्रह्मचारी हम लोग सुबह 6 बजे के निकले, दोपहर के 3:30 बजे नॉन स्टॉप चलते गए, 3:30 बजे फाइनली हम गोमुख, जहां से गंगा उद्गम स्थान जिसका है, वहां पर पहुंचे। और ये हमारे कांग्रीगेशन डिवोटी, इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो फिर हमने इनको इन्फॉर्म किया, प्रभु जी अभी तो गोविंद प्रभु की क्लास होने वाली है वहां पर जाने के बाद गंगा देवी के ऊपर। तो वो जब सुने कि क्लास भी सुनना है अभी उधर जाके, तो बोले प्रभु जी मुझे धक्का क्यों नहीं देते थे इधर से, गंगा की गोद में। तो देखो कई बार क्लास सुनना ज्यादा भयावह लगता है। लेकिन ये सब जो हमने, अब वहां पर कई तो खच्चर पर बैठे थे, वो चल ही नहीं पा रहे थे, तो और खच्चर पर बैठना ज्यादा डरावना लगता है, क्योंकि इतनी सी पगडंडी आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, और वो भी कोई आपका पालतू दोस्त खच्चर नहीं है जिसको आप बचपन से जानते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, तो उसके ऊपर। और इनकी आदत क्या है वहां पर, वो खच्चरों की जहां पर भी उनको घास दिखती है थोड़ी उगी हुई, वो रुक के अपना नाश्ता वगैरह करते रहते हैं उधर, और कई बार घास थोड़ा सा वो नीचे अंदर खाई में होती है, तो वो लोग पूरा झुक के, जो ऊपर बैठा है उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, वो भी पूरा झुका हुआ है, तो जो उसका केयरटेकर है खच्चर का, वो बोलता था कि अरे साहब, शाब शाब करता था वो, शाब आप घबराओ मत, वो खच्चर आज दिन तक कभी गिरा नहीं है। तो ये ऊपर बैठे डिवोटीज बोलते हैं अरे मैं गिरूंगा उसका क्या, तेरे को खच्चर की परी है। तो वो जो पूरी चढ़ाई हम लोग टॉलरेट किए और हैप्पीली टॉलरेट किए, क्योंकि एम्बिशन क्या था, गंगा के उद्गम स्थान का दर्शन करने वाले, कोई साधारण नदी नहीं गंगा देवी। तो ये एक हमारे साधक के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक मेडिटेशन है। क्या मेडिटेशन? माय एम्बिशन हाउ वैल्यूएबल इट इज फॉर मी। क्वेश्चन क्या है? हाउ वैल्यूएबल इज माय एम्बिशन? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन फॉर अ साधक। बाकी सारी चीजें वो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो हमारा उद्देश्य है, जिसके हमको प्राप्त करना है, वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना मायना रखता है, वो निर्धारित करेगा हमारा साधक का जीवन। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक ऐसा प्रदेश था जहां पर कुछ किसान, और वो भी पहाड़ों में रहने वाले किसान, उनका ये प्रदेश था। तो ये अपनी खेती पहाड़ों में किया करते थे। तो हुआ ऐसा कि एक महिला, उसका छोटा बच्चा खो गया। वो खेती में काम कर रही थी, बच्चे को उसने पालने में रखा हुआ था, और जब शाम के समय वो गई अपने बच्चे को संभालने के लिए, तो बच्चा गायब, बच्चा गायब। अब उसने पूरे जो अपने समुदाय को बताया कि अरे मेरा शिशु गायब है, सब जानते थे अच्छे से। तो सबने उस महिला को कहा कि ठीक है, अभी संध्या का समय हो रहा है, आप जाइए आपके घर, हम लोग आपके बच्चे को ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो ये लोग निकल पड़े लालटेन वगैरह लेकर बच्चे को ढूंढने के लिए पहाड़ी इलाका, जंगल, और वो भी अब शाम का समय, सूर्यास्त हो चुका है। तो ये लोग एक दो घंटे हो गए ढूंढ रहे हैं। सुबह हो गई, अब ये लोग हताश, थके, इन्होंने भी रात भर सोया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, तो ये लोग निराश हो गए, हताश हो गए और फिर से लौट रहे थे। और जब सुबह के समय उजाला हुआ, लौटते हुए इन्होंने देखा कि यही महिला जिसका बच्चा खोया, जिसके बच्चे को ये लोग ढूंढ रहे थे, ये अपने बच्चे को गोद में लिए उस पहाड़ी इलाके से नीचे उतर रही थी। तो ये आश्चर्यचकित हुए कि हम लोग रात भर ढूंढ रहे थे और हमें ये बच्चा मिला नहीं, और हमारे पास तो सारे उपकरण थे ढूंढने के, उसके बावजूद, और हम लोग सब पुरुष और ये एक महिला, इसने कैसे ढूंढ लिया अपने बच्चे को? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब पूछा गया इस महिला को, पूछा गया कि अरे भाई तुमने कैसे ढूंढ लिया, इस महिला ने प्रश्न पूछा, बच्चा किसका था? बच्चा किसका था? तुम लोग किसी और के बच्चे को ढूंढ रहे थे, इसलिए तुम्हारे अंदर वो तीव्रता नहीं थी, वो आपातकालीन स्थिति तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चा तुम्हारा नहीं था। बिकॉज द बेबी वॉज माइन, देयरफोर आई कुंट स्लीप इवन अ विंक, मेरी पलकें बंद ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा खोया था। बहुत पावरफुल स्टोरी है ये हम लोगों के लिए, कि जब तक हम कृष्ण प्रेम को अपने स्वयं का प्रोजेक्ट नहीं बनाते, अनलेस कृष्ण प्रेम डजंट बिकम अवर ओन बेबी, वी विल बी वेरी कैजुअल इन लुकिंग फॉर इट। जस्ट लाइक द अदर मेन, द एंटायर मेन फोक ऑफ द विलेज, देवर लुकिंग फॉर दैट बेबी, बट देवर लुकिंग इन अ वेरी डिटैच्ड वे, इन अ वेरी कैजुअल वे। तो वैसे ही जब हम लोग, हाँ, आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, और बताया गया है कि हमें कृष्ण प्रेम हासिल करना है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, ये कृष्ण भावनामृत जीवन शैली के द्वारा हमें कृष्ण प्रेम हासिल करना। परंतु अक्सर हम हमारे भक्ति में इतने ढीले क्यों अपने आप को पाते हैं? Because we don't consider this as our own individual responsibility. दीक्षा हो गई तो कई बार लगता है अब हो गई ना दीक्षा, अब तो गुरु देखेंगे, अब तो उनकी जिम्मेदारी हो गई ना, तो फिर ली क्यों दीक्षा, या दी क्यों उन्होंने दीक्षा, या फिर इतनी बड़ी संस्था है ये इस्कॉन और प्रभुपाद और इतने महान इनके गुरु हुए हैं, और बाकी डिवोटीज वो लोग सब, तो हम भी भीड़ में हो लेंगे, हमारा भी नंबर लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, इज कृष्ण प्रेम सो वैल्यूएबल फॉर मी एज इट वॉज वैल्यूएबल फॉर प्रभुपाद? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन whose baby is it? तो इसलिए जब ये दोनों को हम आज चर्चा कर रहे हैं जिसकी, कि जो टॉलरेट हमें करना है वो तो करना ही है, भगवान ने बोल दिया है, अर्जुन को बोल दिया है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे ताम स्थिति क्षस्व भारत, सहन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैं बैठा हूं तुम्हारे रथ पर फिर भी अर्जुन तुमको सहन तो करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं इनको मैं नहीं बदलने वाला, बहुत कोशिश कर ली इनको बदलने की, नहीं बदले ये, और तुमको भी नहीं बदलूंगा मैं, मारना भी तुमको है और इनको ही है, इनको ही मारना है। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि अरे मेरे रिश्तेदार इनको कैसे मारूं, मेरे पिता मेरे गुरु, सहन करो, मैं कुछ एक्सटर्नली चेंज नहीं करने वाला, हाँ मैं तुम्हें एक दृष्टिकोण दूंगा, मैं तुम्हें एक कारण दूंगा जिसके द्वारा ये जो सहनशीलता है तुम्हारी वो तुम्हारे लिए अनुकूल बनेगी। जैसे निरंजन महाराज वो एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे कि बॉस्टन में वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब किया करते थे एज अ ब्रह्मचारी, अब वहां पर सब जीरो टेम्परेचर, सर्दियों में बर्फ गिरती है और कई बार टेम्परेचर -20 तक जाता है, और क्रिसमस में ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे दिसंबर के महीने में। तो एक बार निरंजन महाराज जो प्रभुपाद से कभी मिले ही नहीं है बाय द वे, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कैसे करते थे वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इतनी ठंड में कोई बाहर तो आता नहीं था, रास्ते पे कोई टहलने थोड़ी जाएगा -20 degrees में, तो वो लोग शॉपिंग के लिए केवल निकलते थे लोग बाहर, क्रिसमस का टाइम है तो वो लोग अपने घर से गाड़ी में, गाड़ी से उतरकर सीधे शॉपिंग मॉल में। तो निरंजन महाराज एज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े रहते थे क्योंकि अंदर एंट्री नहीं इनको ये सब करने के लिए, और घरों में नहीं जा सकते, तो कौन सा समय और जगह है जहां पर ये बुक्स बांट सकते थे, जब ये लोग शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और शॉपिंग मॉल से वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं उतना टाइम और वो जगह। तो निरंजन महाराज बोल रहे थे कि वो ऐसे -20 degrees में सर्दियों में बाहर खड़े बुक्स बांट रहे हैं, और इतनी ठंड कि आंखों में पानी आ जाता था क्योंकि हवा भी बहती थी ठंडी हवा, तो ठंडी हवा के वजह से आंखों में पानी आता था और वो भी जम जाता था, आंसू भी जम जाते थे। He said, we used to have frozen tears. तो एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते निरंजन महाराज सोचने लगे, What am I doing with my life? मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? जब ये प्रश्न उन्होंने पूछा तुरंत प्रभुपाद का चेहरा सामने आया, किसके लिए कर रहा हूं? जब ये प्रश्न पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, पागलपन लगा, क्योंकि लोग उनको देखते थे बोलते ये कैसे पागल लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, अमेरिका जैसे देश में रह रहे हैं लेकिन ये लोग सड़कों पे ये क्या कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद। तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको कोई उत्तर नहीं मिला उस प्रश्न का, परंतु जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा किसके लिए कर रहा हूं, तुरंत प्रभुपाद का चेहरा, कौन सा वाला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि एक किताब यदि मैं किसी बद्ध जीव को दूंगा तो प्रभुपाद की मुस्कान में मैं बढ़ोतरी करूंगा। यस, दैट इज द आंसर टू माई क्वेश्चन। that I am at the right place, at the right time, doing the right thing. Happily tolerating minus 20 degree frozen tears because the ambition was Srila Prabhupada's smile. Kya ambition tha? To see that smile on the lips of my spiritual master. Valuable ambition gives rise to happy tolerance. तो यदि कुछ भौतिक उदाहरण हम लें, जैसे मैंने देखा जब कोई गन्ना खाता है, गन्ने का जूस पीता है वो नहीं, गन्ना वो भी कैसे अपने दांतों से। हम सब ने अनुभव किया है, कभी ना कभी हम गन्ना खाए होंगे चूस चूस के, लेकिन उससे पहले छीलना पड़ता है और वो भी अपने दांतों से। क्या अनुभव है आप लोगों का गन्ना चूसते हुए? इज इट अ वेरी प्लेजरेबल एक्टिविटी छीलते समय? कई बार अंदर के वो आपके मसूड़े छिल जाते हैं, दांत सुन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग गन्ना क्यों छीलते हैं हैप्पीली? वाई? क्योंकि जो रस मिलने वाला है, वो जो सब कुछ ऊपर से छीलेंगे, उसके बाद अंदर जब उसको चूसेंगे दबाएंगे, उसमें से जो रस मिलेगा, आय हाय हाय हाय, तो उसके बारे में सोचते हुए दैट प्लेजरेबल एक्सपीरियंस of drinking that sweet nectarine sugarcane juice, one goes through the ordeal of whatever it takes to reach till that juice. Next udaharan, kisi ki salary 1 lakh rupees hai, mahine ki salary kya hai और कैश में मिलती है उसको, या 2 लाख समझ लो कैश में उसको फैट सैलरी, और जब उसको वो काउंट कर रहा है तो सोचो इतने नोट काउंट करना, अगर 100-100 के नोट है खाली, इतने नोट काउंट करना कैसा लगता है उसको? अगर कोई बोले अरे आपको बहुत तकलीफ हो रही है लगता है, लाइए लाइए मैं करता हूं, नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है, आनंद ही आनंद हो रहा है। वही जो बैंक का कैशियर है उसका चेहरा देखो गिनते समय, क्योंकि उसे पता है इसमें से 1 फूटी कौड़ी उसकी जेब में नहीं जाने वाली है। लेकिन जिसकी तनख्वाह मोटी ताजी तनख्वाह है, उसको गिनते हुए जो परिश्रम भी यदि हो रहा है उसका, परंतु उस परिश्रम के पीछे हर समय कांस्टेंट स्माइल जो है, एक एक गड्डी जा रही, अरे ये पूरे महीने भर मेरे पैसे रहेंगे, ये 1 लाख लखपति 1 महीने के लिए मैं रहूंगा। एक जो वर्जिश करता है, वजन उठाता है, चेहरा देखो कई बार उनका, वजन उठाते समय पसीने पसीने हो रहा है, हांफ रहा है, दीर्घ श्वास ले रहा है, लेकिन जब उस वजन को उठाने के पश्चात वो देखता है डोले शोले, डोले शोले बाहर आ रहे हैं, तो बस वो साइट अपने स्वयं के उस सुदृढ़ शरीर का, वो सारा जो पसीना है परिश्रम है भुला देता है वो। फाइनली जब दूल्हा घोड़ी पे बैठता है। अब एक सर्वे निकाला गया है कि जितने दूल्हे घोड़ी पे बैठते हैं उसमें से केवल 1% दूल्हे होते हैं जिनको घोड़ी चलाना आता है, बाकी 99% होते हैं पहली दफा बैठते हैं घोड़ी पे। एक बार एक आदमी टीवी देख रहा था और आगे पीछे चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है टीवी देखते समय, तो उसका मित्र अचानक आता है उसे मिलने के लिए। देखता है ये टीवी देखते हुए आगे पीछे चल रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, घोड़ी से मत उतरना अनर्थ हो जाएगा, घोड़ी से मत उतरना अनर्थ हो जाएगा। तो पूछता है ये क्या बोल रहा है तू टीवी देखते समय, तो अपने शादी की सीढ़ी देख रहा था। मैं जिस कॉलोनी में पला बड़ा वहां पर एक शादी में मैंने देखा तो जो दूल्हा था थोड़ा बौना था, वो हाइट कम थी, और जो घोड़ी आ गई थी उसके लिए वो उसके डबल साइज की थी। तो अब वो एकदम, क्योंकि थोड़ा हाइट उसकी कम थी तो इसलिए उसने हाई हील शूज पहने हुए थे ताकि रिसेप्शन में शादी में थोड़ा ढंग का दिखे। तो अब वो घोड़ी इतनी ऊंची थी कि ये खुद से तो चढ़ ही नहीं पा रहा था, तो फिर अब वो टाइम आता है ना जब घोड़ी के ऊपर वो चढ़ने वाला है और वहां से वो बारात निकलेगी, तो सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, 2-3 एंगल से कैमराज लगे हुए थे। इसके लिए वो टेबल लेकर आए, एक टीपॉय कि उस पर चढ़ के, और वो भी सनमाइका, स्मूथ ग्लॉसी सनमाइका। आपको अंदाजा लग गया होगा आगे अब उसकी रिकॉर्डिंग में क्या आने वाला है। तो अब वो डरा हुआ, तो मैं देख रहा था उसको कि इतनी मेहनत वो कर रहा है, डरा हुआ है, लेकिन एक मुस्कान है कि शादी हो रही है। जैसे एक बार एक व्यक्ति की शादी हो रही थी तो पंडित जी से वो पूछता है कि पंडित जी ये मेरी मंगेतर को लेफ्ट साइड में बिठाना चाहिए कि राइट साइड में बिठाना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा जहां पर भी बिठा लो, बाद में तो सर पे ही बैठने वाली है। तो मतलब सर का ताज बनने वाली है। आप लोग पॉजिटिव नहीं सोचते आप। पंडित जी के कहने का मतलब था सर का ताज बनेगी वो। तो ये देखिए कुछ उदाहरण है जहां पर हमको थोड़ा सा अंदाजा आ सकता है कि वैल्यूएबल एम्बिशन एंड हैप्पी टॉलरेंस का क्या कॉम्बिनेशन है। अब हम कुछ हमारे कृष्णा कॉन्शियस पहलू लेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। Is there any philosophy more convincing than Lord Chaitanya's philosophy? मतलब यदि कोई philosophically attracted है कृष्ण consciousness में, तो philosophy जो चैतन्य महाप्रभु लाकर दिए हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, एक ऐसी philosophy है। और श्रील प्रभुपाद ने जो इतने practically इस philosophy को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जैसे श्रील प्रभुपाद यही फिलॉसफी को कितने एक रेलेवेंट तरीके से प्रस्तुत करते थे और कितने कन्विंसिंग तरीके से प्रस्तुत करते थे। बहुत से प्रभुपाद के डिसाइपल्स वो अपनी मेमोरीज में कहे हैं कि उन्होंने प्रभुपाद की सारी पुस्तकें आज दिन तक नहीं पढ़ी हैं, नहीं पढ़ पाए, वो समझ ही नहीं आते थे उनको। क्योंकि सोचो कि जो अमेरिका में पला बड़ा है और कभी उसने संस्कृत नहीं, और संस्कृत के जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो फिलॉसफी है, तो बहुत से प्रभुपाद डिसाइपल्स ये कहते थे कि इन्होंने जब प्रभुपाद को किसी क्वेश्चन आंसर सेशन में देखा, बहुत से ऐसे नए रिपोर्टर्स, कई साइंटिस्ट, कई एथीस्ट ऐसे आते थे और ऐसे ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रभुपाद से, तो और ये लोग दर्शक होते थे, ये खाली बैठ के देखते थे सुनते थे कि हम लोग जो सबसे हमारे अमेरिका का अतरंगी है उसको प्रभुपाद के सामने लाएंगे और वो चाहे कन्विंस हो या ना हो, ये स्वामी जी जो तरीके से आंसर देते हैं हम कन्विंस हो जाते हैं। जैसे कि ये एक मास्टरपीस है, प्रभुपाद जिस तरीके से आंसर करते थे उसमें से एक मास्टरपीस है ये, मुझे सबसे अच्छा लगा। तो प्रभुपाद के पास ये व्यक्ति आया और प्रभुपाद को इसने क्वेश्चन पूछा, आर यू हैप्पी? स्वामी जी आर यू हैप्पी? तो प्रभुपाद का मैंने देखा है स्टाइल, कई बार ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को प्रभुपाद कैसे आंसर करते थे, प्रभुपाद वुड शूट बैक अनदर क्वेश्चन उसको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब उसने ये क्वेश्चन पूछा, स्वामी जी आर यू हैप्पी, प्रभुपाद ने उसको क्वेश्चन पूछा, विल यू बिलीव मी? अब देखो वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोगों के सामने इसने जब ये क्वेश्चन पूछा तो सबको होता क्या है, किसी भी कन्वर्सेशन में जब कोई क्वेश्चन पूछता है ही बिकम्स द लीडर ऑफ द कन्वर्सेशन। तो सभी इसके साथ थे, अभी वाह क्या लोडेड क्वेश्चन पूछा, अभी प्रभुपाद क्या बोलेंगे, यस या नो, यस बोले दुखालय में शाश्वतम है पूरा संसार, यस कैसे बोलेंगे, नो बोलेंगे तो साधु होके तुम दुखी रहते हो, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, इसको ऐसे लग रहा था ये व्यक्ति को। तो प्रभुपाद ने पूछा, विल यू बिलीव मी? अब अगर ये बोले नो तो साला क्वेश्चन ही क्यों पूछता है तू? हाँ, अब ये पूरा चेकमेट हो गया, ये अगर नो बोलता है तो तूने पूछा ही क्यों फिर, तू तो बिलीव ही नहीं करने वाला मैं जो भी बोलूं। तो उसने बोला, यस आई विल बिलीव यू, प्रभुपाद सेड यस, देन माय आंसर इज यस। एंड ऑफ डिस्कशन। तो आपने देखा होगा कि कितने ऐसे प्रभुपाद के इंटरेक्शंस या हमारी फिलॉसफी, मतलब कई बार हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मचारी 6 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है उनको ज्वाइन किए और वो लोग कुछ कोर्सेज दे रहे हैं, गीता कोर्स दे रहे हैं और तुरंत एनी क्वेश्चंस और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले कॉन्फिडेंटली उसके पास उसका आंसर होता है। जैसे इस बार जो मैं बता रहा था, एक क्रिश्चियन प्रीचर मुझसे मिला था, तो अब इन लोगों का ये मानना है कि यदि कोई जीसस क्राइस्ट को सरेंडर नहीं करता है तो वो नरक जा रहा है। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो ये ओपनली बोलते हैं, लेकिन सबका ये मानना है, अनलेस यू सरेंडर टू जीसस देयर इज नो सेल्वेशन फॉर यू, नरक गति तुम्हारी निश्चित है। तो ये मेरे साथ डिस्कस कर रहा था, तो अभी क्योंकि थोड़ा प्राइवेट डिस्कशन था तो उसने ये मुद्दा लिया सामने, दैट अनलेस यू सरेंडर टू जीसस, यू नो दैट्स व्हाट जीसस हैज टोल्ड, आई एम द ओनली वे। तो मैंने इसको क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा, इन योर कंट्री हियर सो मेनी बेबीज आर अबॉर्टेड, अबॉर्शन मतलब वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जिंदा है पैदा नहीं हुआ, बेबीज आर अबॉर्टेड। तो मैंने पूछा, अकॉर्डिंग टू यू बेबीज, अब यू वो लोग भी अबॉर्शन के अगेंस्ट हैं बाय द वे, क्रिश्चियंस अगेंस्ट है अबॉर्शन के। तो मैंने पूछा, अकॉर्डिंग टू यू एन अबॉर्टेड बेबी इज ही लिविंग ह्यूमन बींग? लिविंग ह्यूमन बींग। तो मैंने बोला, ही हैज नॉट सरेंडर्ड टू जीसस बिकॉज ही हैज बीन अबॉर्टेड, उसको कहां तुमने बैप्टाइज किया है, उसने कौन सी बाइबल पढ़ी है, उसने, उसको तो सूर्य की पहली किरण भी देखने नहीं मिली, उसको तो मार डाला गया उस बच्चे को। तो मैंने पूछा, एन अबॉर्टेड बेबी, व्हाट इज हिज डेस्टिनेशन, क्या डेस्टिनेशन है उसका? तो उसने बोला, ही इज इनोसेंट अकॉर्डिंग टू जीसस, ही इज इनोसेंट बिकॉज ही हैज नॉट कमिटेड एनी सिन, सो ही इज इनोसेंट। बोला, सो ही इज इनोसेंट, सो वेयर ही विल गो? ही विल गो टू जीसस, हेवन। बोला, देन स्टार्ट अबॉर्टिंग एवरीवन ना। फाइनली अगर सबको तुमको हेवन भेजना है, जीसस के पास भेजना है, तो कितना आसान है, ये सब इतने बड़े बड़े चर्च खोलने की क्या जरूरत है, अबॉर्ट करते रहो बच्चों को। ऐसे ऐसे करने, हाउ कैन यू आर ओनली सेइंग ना, तो क्या डिसाइड करता है भैया? तुम बोल रहा है कि वो इनोसेंट है, वो मासूम है, और वो उनके स्वर्ग में जाएगा, लेकिन तू बोल रहा है वो उसको मार नहीं सकते। तो तुम पहले डिसाइड करो कि तुम किसकी फिलॉसफी को मानता है, गो एंड फर्स्ट डिसाइड। इनफैक्ट ये क्रिश्चियन प्रीचर, हालांकि वो फ्रेंडली डिस्कशन चल रहा था, उसने बाद में बोला, आज दिन तक मैं पिछले 32 साल से प्रीचिंग कर रहा हूं, मेरे को किसी ने कंफ्यूज नहीं किया। और वो सीरियसली बोल रहा था, आई एम हैविंग डाउट्स। पहले उसको जीसस क्राइस्ट के ऊपर डाउट था, वेदर ही एग्जिस्टेड और नॉट। अब इस डिस्कशन के बाद बोला, आई हैव डाउट्स अबाउट इवन द फिलॉसफी। तो इसके ऊपर ही हम लोग एक पूरा सेमिनार ले सकते हैं कि हाउ पावरफुल द फिलॉसफी इज। तो क्वेश्चन ये है, एम आई कंसिडरिंग चैतन्य महाप्रभुज फिलॉसफी एज वैल्यूएबल? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम आई कंसिडरिंग दैट इज वैल्यूएबल? या मेरे लिए चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी नींद लेने के लिए? हाँ, अरे कौन वो इसी फिलॉसफी को पढ़े समझे, और चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया है ना, उन्होंने दिया है ना, चैंट करेंगे ना उसको जब भी टाइम मिलेगा। हाँ, क्या ये भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, अरे भक्ति होना चाहिए, बाकी साइड का हटा होगा उसके बाद में आला। तो हम लोग फिलॉसफी जानने के लिए हम कितना कतराते हैं, बट अगर थोड़ी बहुत भी फिलॉसफी हम जान लेंगे तो समझ में आएगा कि हम किन से जुड़े हैं। अगर आप जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक हमारे प्रीचर, वो एक बंगाली से मिले न्यूजीलैंड में, तो बंगाली को पूछा कि भाई आप बंगाल से हो, आपने तो सुना होगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इसने बोला, नहीं मैं खाली मिथुन चक्रवर्ती के बारे में सुना हूं। तो बंगाल या जो भी, खाली हम लोग भी खाली एक ही चक्रवर्ती को सुने थे, यहां आने के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये हैं हमारे असली हीरो, जो इन्होंने ऐसी ऐसी टीकाएं दी हैं चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी लाइफस्टाइल मोर प्योरर एंड मीनिंगफुल देन कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल? अब यहां पर आने के बाद देखो, जो शुद्ध लाइफस्टाइल हमको प्राप्त होती है जीने के लिए, कि सबसे पहले तो रोज सुबह नहाना, जल्दी उठ के नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आपके आचार विचार उसको शुद्ध रखना, आपके आदान प्रदान उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, आपकी आपकी बोली के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, आपकी सब कुछ के अंदर, जो हर चीज के अंदर प्योरिटी। तो जब एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि मतलब इतना शुद्ध जीवन भी हम जी पाएंगे इसी जीवन में जो कि अब तक एक प्रकार का दलिद्री जीवन जी रहे थे। बाह्य शुद्धता की बात कर रहे हैं, आंतरिक तो अलग है। जैसे ब्रह्मानंद प्रभु और गर्गमुनि प्रभु, ये दोनों भाई एक साथ ज्वाइन किए अमेरिका में, प्रभुपाद को एक साथ ज्वाइन किए, तो इनकी मदर आई शिकायत लेते हुए कि मेरे दोनों बेटे को, ये कौन है, ये भारत से सन्यासी आया मेरे दोनों बेटों को ले लिया। तो शिकायत लगाते हुए आई तो प्रभुपाद ने, प्रभुपाद तो जीनियस थे ही सबसे डील करने में, तो प्रभुपाद ने इनकी मां को कहा, योर टू सन्स दे वर लाइंग ऑन द स्ट्रीट ड्रग्ड, बिना नहाए धोए, कुछ खाने के लिए नहीं था इनके पास, इनको रास्ते से उठाकर मैंने यहां पर रखा है, खिलाया है, पहनाया है, नहलाया है, धुलाया है, पैसे दो मेंटेनेंस के, तुम्हारे बेटे को इधर मेंटेन कर रहा हूं मैं। तो ये बोली, आई हैव ऑलरेडी डोनेटेड माई टू सन्स, व्हाट एल्स डू यू वांट। फिर उस, मैंने क्या बोला है, वो तो लेने आई थी दोनों बच्चों को, अब खुद ही अपने मुंह से बोल रही है आई हैव ऑलरेडी डोनेटेड माई टू सन्स। तो प्रभुपद बोले, देन व्हाई हैव कम, व्हाई हैव यू कम। और वो बाहर निकलते हुए अपने दोनों बच्चों को कहती है, यू आर इन राइट हैंड्स, ही इज अ जीनियस, दिस मैन ही इज अ जीनियस। तो सही में प्रभुपाद ने वो किया था इनके साथ कि ये लोग, कई तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स बने कि जो बाकी हिप्पी थे, प्रभुपाद तो छोड़ दीजिए, प्रभुपाद तो बॉर्न वैष्णव जिन्होंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, कभी चाय नहीं पी, कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, प्रभुपाद इनके बीच गए। और कई ऐसे हिप्पी थे जो इतने गंद में रहते थे ये लोग, ऐसे दलिद्री कि बाकी के हिप्पी वो लोग कहते थे, यार ये तो सबसे गया गुजरा है हमारे बीच में। There were some hippies who were considered outcast amongst other hippies. और उनको प्रभुपाद ने स्कॉलर बनाया, ये कुशकृत प्रभु जैसे, क्रेजी पीटर उनको बोलते थे, इतना बड़ा स्कॉलर प्रभुपाद ने बनाया। तो देखो ये जो लाइफस्टाइल हमको प्राप्त हुआ है, गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो बॉम्बे के लोकल ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक बंदे को उन्होंने भगवत गीता दिखाई, उसने कहा मेरे पास है मेरे पास। तो गौरांग प्रभु ने कहा आपके फादर के लिए आप लो, उन्होंने कहा मेरे फादर के पास भी है, यही वाली है एज इट इज आप लोगों की। तो उन्होंने कहा आपके दादाजी के लिए लो, उनके पास भी है, दादाजी के पास भी है, पिताजी के पास भी है, मेरे पास भी है। तो गौरांग प्रभु स्माइल करके उसको प्रसाद दिया, बोला ठीक है बहुत अच्छा, या पढ़ो उसको। फिर निकल गए वो दूसरे बोगी में गए। 10 मिनट बाद ये भागते हुए ढूंढते हुए आया प्रभु जी को और कहता है मुझे चाहिए एक और भगवद गीता चाहिए। तो उन्होंने पूछा अभी अभी तो तुमने पूरे खानदान की लिस्ट निकाली थी, सबके पास है। तो इसने कहा नहीं, मैं एक और इसलिए लेना चाहता हूं, पिछले 2 महीने से किसी ने मुस्कुरा के मुझसे बात नहीं की है, नोबडी हैज स्माइल्ड एंड टॉक टू मी, यू आर द फर्स्ट वन इन 2 मंथ्स हु हैज स्माइल्ड एट मी, प्लीज आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, गिव मी वन बुक। तो गौरांग प्रभु बोले यू शुड हैव टोल्ड अर्लियर, आई वुड हैव लाफ्ड। तो देखिए बाहर लोगों का जीवन, जैसे हम बुधवार को बोल रहे थे शोकाश्रु भव सागरात, ये एक ऐसे सागर में लोग गोते लगा रहे हैं या थपेड़े खा रहे हैं जो कि उन्हीं के आंसुओं से बना हुआ है, कल्पना कीजिए कि किसी के बंगले में उसका स्विमिंग पूल उसी के आंसुओं से भरा हुआ, और अपने ही आलीशान बंगले में, अपने ही स्विमिंग पूल में, अपने ही आंसुओं में तैर रहा है वो या डूब रहा है, उसको आप सफल बोलोगे? सो द क्वेश्चन इज, वेयर कैन यू गेट सच अ प्योर लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट प्योर बट मीनिंगफुल लाइफ स्टाइल? हमारे कितने डिवोटीज वो कन्फेस करते हैं कि इस्कॉन के इस जीवन शैली को पालन करने के बाद उनका स्वास्थ्य सुधरा है, लाइफ हैज बिकम मोर इकोनॉमिकल, फालतू के खर्चे कितने कम हुए हैं, जो फालतू के पार्टियों में जाकर अंधाधुन समय बर्बाद करना, पैसे बर्बाद करना, वो सबसे कितना बचे हैं, जो ये दिखावटी जीवन पहले जीते थे? और क्या कि दिखावटी जीवन दूसरों का उसमें शामिल होना, दूसरों के दिखावटी जीवन में शामिल होना और उसको बरकरार रखने के लिए खुद का दिखावटी जीवन दूसरों को दिखाना, ये जीवन जो चल रहा था पहले, व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन एज फार एज लाइफस्टाइल व्हिच इज फुल ऑफ मीनिंग, व्हिच इज फुल ऑफ सो मच ऑफ प्योरिटी? जैसे इस्कॉन में आने के बाद, आने से पहले ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये वर्ड हम लोगों ने अभी इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़े थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी, और वो भी ऐसी ऐसी इंग्लिश की किताबें पढ़ी थी, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन ये वर्ड कभी नहीं पढ़ा था। किया बहुत था, कभी पढ़ा नहीं उसके बारे में। हम लोग सबका यही अनुभव है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन अभी कितना पढ़ते हैं, करने को नहीं मिलता है, पढ़ते बहुत हैं लेकिन उसके बारे में, पहले पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं थे, करते रहते थे, और पहले हरिनाम के बारे में सुनते बहुत थे, करते नहीं थे। इस्कॉन में सुनते कम है, करते ज्यादा है। Is there anyone more worthy of my surrender than Lord Krishna? अब देखो, जब कोई मुझसे पूछता है कि अरे भाई आपने ये भगवान कृष्ण को ही क्यों चुना, तो मैं हर समय एक आंसर देता हूं, भाई स्टैंडर्ड के भगवान है हर दृष्टिकोण से, उनका सौंदर्य स्टैंडर्ड का है, खड़े रहने का स्टाइल सबसे स्टाइलिश भगवान है, और जब मतलब इंस्ट्रूमेंट भी क्या चुना है, इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने बांसुरी, एकदम रिफाइंड एलिगेंट इंस्ट्रूमेंट चुना है, हर चीज चुनिंदा है इनकी, एवरीथिंग इज, जैसे बोलते हैं कॉनोजियर, हर चीज उनकी चुनिंदा है, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं ब्रांडेड डिजाइनर पहनते हैं हर चीज, मोर पीस, बांसुरी, त्रिभंग में खड़ा होना, कलर, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव पार्षद, ऐसे ही किसी आयाराम गयाराम को नहीं लेते हो, सब एकदम स्टैंडर्ड के होने चाहिए, स्क्रिप्चर भी उन्होंने स्टैंडर्ड की, भगवद गीता सुनाया, सब कुछ उनका स्टैंडर्ड का है। जैसे महाभारत में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि युद्ध के दौरान दुर्योधन, एक पॉइंट आ गया था युद्ध में जब दुर्योधन वो होप्स छोड़ दिया था जीतने का, पहले से उसको डर था, परंतु एक पॉइंट आ गया था जब उसने होप्स छोड़ दिया कि कोई आसार नहीं हमारे जीतने के, हालांकि 11 अक्षौहिणी सेना उसकी थी और पांडवों की केवल 7, लेकिन फिर भी उसने होप्स छोड़ दिया, तो वो फिर यहां वहां पैंतरे लगा रहा था, कैसे मैं, हाउ आई कैन गो अराउंड माई डिफीट एंड विन, दैट वॉज वॉट ही वॉज ट्राइंग। तो उसे पता था कि ये पांच पांडवों में ये जो सहदेव है ये एक ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर. सहदेव वॉज वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर. तो अब आपने कभी नहीं सुना होगा दुर्योधन और सहदेव का कोई इंटरेक्शन, कभी सुना है? कभी उसने फोकस भी नहीं किया सहदेव के ऊपर, लेकिन अभी उसको जब पता चला तो वो सहदेव के पास जाता है दुर्योधन, और सहदेव से कहता है कि मुझे कालबलि यज्ञ करना है, और कालबलि यज्ञ अमावस्या के दिन ही होता है. किसके लिए? विक्ट्री के लिए, मेरी विजय के लिए. तो सहदेव बोल देते हैं ठीक है, आने वाली अमावस्या को ये पर्टिकुलर तिथि है, उसमें ये कालबलि यज्ञ तुम करोगे तो तुम विजयी हो जाओगे. मतलब सोचो कि ये पांडवों, इनकी शराफत किस लेवल की थी. युद्ध चल रहा है और पूछने कौन आया? दुर्योधन पूछने आया. किसके लिए पूछने आया? विजय कैसे हो, कालबलि यज्ञ और सब तिथि डेट्स वगैरह टाइमिंग सब कुछ इंफॉर्मेशन कौन? सहदेव दुर्योधन को दे रहा है. जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण पांडवों को बुलाते हैं, सहदेव को बुलाते हैं, बोलते हैं भैया तुम लोगों ने क्या शराफत का ठेका तुम लोग नहीं ले रखा है क्या? पीएचडी किया है क्या तुम लोगों ने शराफत में? अरे मैं यहां पर अपना खून पसीना एक कर रहा हूं तुम लोगों को जिताने के लिए. कभी कोई किसी को कोई वचन दे देता है, कभी कोई किसी को वचन दे देता है. जैसे युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को बोल दिया कि हम पांचों में से किसी को भी चुन लो और अगर तुम जीत गए तो हस्तिनापुर तुम्हारा. इतना सब कुछ होने के बाद भगवान बोलते हैं कि ये युधिष्ठिर कर क्या रहा है? तो भगवान हर समय टेंशन में चले जाते थे कि ये लोग पता नहीं कहां अपनी शराफत किसको दिखा देंगे. तो युधिष्ठिर महाराज ने पूरा ओपन ऑफर दे दिया, दुर्योधन को ओपन ऑफर दे दिया, किसी से भी तुम चुन लो लड़ाई. अच्छा, दुर्योधन भी कम नहीं था. दुर्योधन ने नकुल को नहीं चुना, अभी वो चुन सकता था. अरे जब इतना ओपन ऑफर है तो नकुल को तो मैं आराम से हरा सकता हूं. नकुल को नहीं चुना. भीम, उसका भी ईगो था ना अंदर, मैं भी भीम को ही हरा के हस्तिनापुर लूंगा. तो भगवान भी जानते थे कि ये लोग जितने शरीफ हैं उतना अभिमानी ये दुर्योधन है, तो थोड़ा उनको तसल्ली थी. तो अब सहदेव ने जब ये सब कुछ बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया दुर्योधन को, दुर्योधन पूरी तैयारी में, कालबलि यज्ञ अमावस्या के दिन पूरी तैयारी में. अब भगवान चिंतित, तो भगवान तर्पण करने बैठ गए गंगा के तट पर. तो भगवान तर्पण करने बैठ गए और जब वहां के पंडितों ने देखा कि अरे ये आज के दिन तर्पण क्यों कर रहे हैं भगवान, ये तो ठीक दिन नहीं है तर्पण करने का, तर्पण तो अमावस्या के दिन होना चाहिए. लेकिन भगवान वो तो कर रहे होंगे तो कुछ उसके पीछे राज होगा. तो वो लोग भी पंडित सब आके बैठ गए उस यज्ञ में. और फिर ऊपर सूर्य और चंद्र वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं. सूर्य चंद्र को पूछ रहे हैं आज डेट क्या यार, ये अमावस्या तो नहीं है, तो ये नीचे भगवान ये तर्पण क्यों कर रहे हैं आज, अमावस्या नहीं है. चंद्र बोलते हैं हाँ अमावस्या तो नहीं है, तो वो तो गलती नहीं कर सकते, अब वो कर रहे हैं तो हमको तो जाना पड़ेगा. तो सूर्य और चंद्र दोनों आ गए और दोनों लाइन में खड़े हो गए वो तर्पण के यज्ञ में. और फिर भगवान ने सब पांडवों को बुलाया कि काल बलि यज्ञ अभी करो यहां पे, क्योंकि कॉन्स्टलेशन के अनुसार व्हेन सूर्य एंड चंद्र दे आर इन वन लाइन दैट बिकम्स अमावस्या. और भगवान ने सूर्य और चंद्र को अपने टाइम के अनुसार एक लाइन में खड़ा कर उस दिन अमावस्या करा ली और यज्ञ कर लिया. और फिर किसके फेवर में हो गया? पांडवों के फेवर में होगा. और नेक्स्ट डे ये पूरी तैयारी में था दुर्योधन, देखता है सूर्य चंद्र बोलते हैं सॉरी हो गया अमावस्या, तुम्हारी तिथि गई. सो दिस इज व्हाट कृष्णा डज फॉर हिज डिवोटीज. He can go to any extent. उनकी भक्त वत्सलता किस स्तर तक जा सकती है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए. इसलिए तो पूतना के एपिसोड में जो कहा गया है, कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम अहो बकियम स्तनकालकूटम, कि वो जो मारने आई थी भगवान को और इस प्रकार से मारने आई थी जब भगवान केवल 6 दिन के थे और भगवान ने उसको धातृपद दे दिया, इनसे ज्यादा दयालु और कौन हो सकते हैं? सो why we have to be distracted towards anyone else when we have Shyam Sundar Madan Gopal ji as the lord and master of our life? Is there any mantra more powerful than the mahamantra? Ab कितने सारे मंत्रों का उच्चारण हमने पहले भी किया होगा और पता भी होगा, अलग अलग कितने मंत्र होते हैं, परंतु ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र के अंदर जो शक्ति है, अब बहुत साधारण सा ये लगता है, इसके अंदर कोई क्लिष्टता नहीं है, कोई आपको संस्कृत का ग्रामर जानने की जरूरत नहीं है महामंत्र चैंट करने के लिए। इनफैक्ट कई तो अलग अलग उनके वॉल्यूम्स होते हैं चैंट करने के, अलग अलग प्रोनंसिएशन होते हैं महामंत्र चैंट करने के, कई रामो बोलते हैं, कई हड़े बोलते हैं, हड़े कृष्णा, जैसे कि चाइनीज डिवोटीज हैं, वो लोग र बोल ही नहीं सकते, तो वो लोग जिस प्रकार से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अपना जीवन पूरा परिवर्तित हो गया उनका, इतने एडवांसमेंट कर रहे हैं वो, इवन मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द महामंत्र। तो तमाल कृष्ण महाराज फिजी में थे, फिजी आइलैंड्स, तो वहां पर अकाल पड़ा हुआ था उस समय, तो ये लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो एक ने क्वेश्चन पूछा कि आप लोग ये हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है और आप लोग ये किस कार्य में लगे हुए हो, अरे कुछ कीजिए इस अकाल के लिए, आप ये जो चैंटिंग कर रहे हो, क्या ये चैंटिंग बारिश ला सकता है? तो ये ओपन चैलेंज किया और पब्लिक में, और तमाल कृष्ण महाराज स्टेज पे इसे कीर्तन करते समय बोल दिए, यस हम लोग सिंसियरली अगर आकर चैंटिंग करेंगे इस हरे कृष्ण महामंत्र को तो फिर बारिश अवश्य होगी। और उसी शाम को तमाल कृष्ण महाराज की फ्लाइट थी वापस अमेरिका जाने की, तो वो तो निकल रहे थे, बाकी डिवोटीज वो मंदिर के बोले, महाराज आप तो हमको प्रॉब्लम में डाल के चले गए। तो महाराज ने कहा, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर सिंसियर चैंटिंग। और फिर सारे डिवोटीज, क्योंकि अभी बोल दिया है, पेपर्स में छप गई ये बात, क्योंकि सब लोग इसी प्रतीक्षा में थे कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, तो सारे डिवोटीज के ऊपर ये एक जिम्मेदारी आ गई अब, तो सब लोग एक साथ आकर, और जो तमाल कृष्ण महाराज ने उनको बोला था कि सिंसियरली पूरा हार्ट एंड सोल लगाकर उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक कीर्तन किया और बारिश के घने बादल छाने लगे और 3 घंटे बाद वहां पर जो अकाल पड़ा हुआ था बारिश आने लगी। और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया, हरे कृष्णा द रेन मेकर्स। तो ये ऐसी स्टोरीज जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हाँ चमत्कारी है हरे कृष्ण महामंत्र, कि हरे कृष्ण महामंत्र से इस प्रकार की वर्षा हो सकती है। परंतु सबसे बड़ा चमत्कार जब प्रभुपाद को पूछा जाता था, अरे आप इंडिया से आए हो जहां पर गुरु बाबा योगी रहते हैं जो अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं, तो आप क्या चमत्कार दिखाओगे या आपने क्या चमत्कार दिखाया? प्रभुपाद अपने अमेरिकन यंग डिसाइपल्स और वही सन्यासी इनको सबको दिखाते थे और कहते थे कि दिस इज द मिरेकल, ये देखो ये चमत्कार, कि ये लोग सब पहले किस प्रकार का जीवन जीते थे। राधानाथ महाराज वो बता रहे हैं कि न्यू वृंदावन में जब वो थे एज अ ब्रह्मचारी, तो एक व्यक्ति वो न्यू वृंदावन का दर्शन करने आए टेम्पल का, वेस्ट वर्जीनिया, तो राधानाथ महाराज उसको दिखा रहे थे, पहली दफा वो वहां पर आया था। तो महाराज ने उसको पूछा कि कैसे आपको पता चला मंदिर के बारे में। तो उसने कहा कि मुझे एक किताब मिली और बहुत अच्छी किताब लगी मुझे, मुझे वो कचरे के डब्बे से मिली थी किताब, लेकिन वो मेरे को किताब बहुत अच्छी लगी और मैं पिछले कई सालों से उस किताब में एक चैंट लिखा हुआ है तो मैं उसको कर रहा हूं। तो महाराज ने पूछा क्या चैंट करते हो आप, तो उसने कहा हैर कृष्ण हैर कृष्ण 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 हैर हैर, तो अभी इंग्लिश में, तो उसको पता नहीं कि ये हरे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हैर प्रोनाउंस करता था उसको। तो महाराज मुझे कौन सी किताब है वो, भगवद गीता, उसको भगवद गीता मिली और वो उसको पता नहीं कि इसके पीछे एक संस्था है, इसके पीछे पूरा पूरी गुरु परंपरा है, इतने डिवोटीज हैं, कुछ पता नहीं उसको। और वो इतना प्रभावित हो गया और वो महामंत्र, और उसने कहा कि ये जब से मैंने महामंत्र जो भी उसमें लिखा गया है वो चैंट में कर रहा हूं तो मेरे अंदर मैं इतने बदलाव देख रहा हूं कि अपने आप जो मैं पहले का जीवन जिसको मैं इतना वैल्यूबल मानता था वो सब कुछ मुझसे छूटता गया। तब फिर महाराज ने उसको बताया कि ये जो किताब आपको मिली है वो इसी संस्था की है और आप फाइनली वो किताब और वो उस किताब में जो दी गई प्रणाली इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हुए आप फाइनली जहां पहुंचे हो वो आपका गंतव्य स्थान है। तो इसलिए हालांकि हमारे पास और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम हमारी अगली सिटिंग में लेंगे, लेकिन अच्छा नोट है महामंत्र के ऊपर हम आज के हमारी क्लास को विराम दें कि जो हमने आज की शिक्षा प्रारंभ की, इफ समथिंग विच इज वैल्यूएबल एज योर एम्बिशन देन वॉट एवर इट टेक्स टू रीच टू दैट एम्बिशन यू विल हैप्पीली टॉलरेट। इसलिए ये जो कहावत है इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डाई फॉर You do not have anything to live for. जब तक हमारे अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जुनून या आज की भाषा में अगर कहा जाए कि भूत सवार नहीं होता है ना, कई लोग बोलते ना अरे तुम्हारे ऊपर क्या भूत सवार हुआ है, तो जब तक हमारे अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का भूत सवार नहीं होता तब तक हम इस कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं ले पाएंगे। कैसे रहेंगे हम लोग, आधे इधर आधे उधर, आधे अधूरे रहेंगे कि हाँ थोड़ा एक पैर एक नाव में दूसरा पैर दूसरे नाव में। कल्पना करो कि अगर आपके दोनों पैर अलग अलग नाव पर हैं तो कब तक आप बैलेंस टिकाए रखोगे, और वो नाव पानी में है कब तक वो बैलेंस टिकाए रखोगे। इसलिए जो जीसस क्राइस्ट ने कहा इफ यू आर हॉट इफ यू आर कोल्ड यस आई रिस्पेक्ट यू बट इफ यू आर लुकवर्म आई स्पिट एट यू। तुम अगर बीच के हो न इधर के न उधर के तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए ध्रुव महाराज ऐसे ऐसे उदाहरण हैं श्रीमद् भागवत के अंदर, प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज इन्होंने जो वो जुनून दिखाया कि हाँ मुझे भगवान श्री कृष्ण से जो वरदान चाहिए वो तो भौतिक वरदान मांग रहे थे परंतु 6 महीने में भगवान को अपने सामने अवतरित करा दिया, एक अलग अवतार ध्रुव महाराज के लिए, अलग रूप, अलग अपने स्केड्यूल से अलग बाहर निकलकर भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए गए। और वो सब के पीछे कारण क्या था ध्रुव महाराज का इंटेंस एब्जॉर्प्शन और एस्पिरेशन टू गेट द बेनेडिक्शन फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. तो इसलिए जब तक हमारे अंदर हम वो अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते, हरिनाम कि वो महादावाग्नि को प्रज्वलित नहीं करते, तब तक ये जो हमारे अनर्थ हैं उनका शमन नहीं होगा. इसलिए हम लोग सब जो इतना श्रवण कीर्तन, ये हर हफ्ते इतने फेस्टिवल्स, सालों साल महीने, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ताकि फाइनली हम ये जो आज का प्रिंसिपल है कि जो हमारा उद्देश्य है उसको हम वैल्यू करें, और जब हम उसको वैल्यू करना प्रारंभ कर देंगे, बस वही हमारे मुक्ति की शुरुआत है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो हमने उस दिशा में जाना प्रारंभ कर दिया है. बोलो श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदी. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न टीका?
इसलिए शिक्षाष्टकम प्रभु की. हरे कृष्णा. कुछ महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार से है. आने वाले बुधवार का जो गीतामृत प्रवचन होगा वो श्रीमान गौरांग प्रभु द्वारा दिया जाएगा, और जो हमारा 23 तारीख का ब्रह्म